اعوذ باللہ من الشیطان اللین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول الثقلین، محبوب رب المشرقین المغربین، جد الحسن والحسین، ابو القاسم محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین. بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا سار اللہ وابن سارح والبدر الموتو، صلوات پڑھے محمد والے محمد پر، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. عزاداران امام اہل بیت چینل لندن سے میری 8 محرم کی مجلس، 8 محرم 1448 ہجرا، اس کی یہ مجلس مسلسل 7 دن سے آپ سے معروضے کر رہا ان کلمات کے اوپر کہ یا سار اللہ وابن سارح والبدر الموتو، کہ مولا حسین جس کے ساتھ آپ نے جہاد کیا، جنگ کیا، ہم بھی اسی کے ساتھ کریں گے، اور جس کے ساتھ آپ نے صلح کیا، پیس کیا، ہم بھی اسی کے ساتھ کریں گے. یہ ہمارا وعدہ ہے مولا حسین سے، اور جب زیارت پڑھتے ہیں ہم اپنے وعدے کو، اپنے پرومس کو ریپیٹ کرتے ہیں کہ مولا حسین وی آر ہیئر، ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور جن جن چیزوں سے، ایک چیز سے نہیں، جن جن چیزوں سے آپ نے جنگ کی ہم اس کے ساتھ جنگ کریں اپنی اس پریکٹیکل لائف میں، یہ ڈے ٹو ڈے لائف میں. تب اس کا یہ مطلب یہ جنگ کرنے کا کہ آپ میدان میں نکلے، لندن کے بازار میں نکلے، نو، موسٹ پیسفل کمیونٹی ہم کو بننا ہے، ہم کبھی جھگڑا نہیں کریں، اس لیے کہ مولا حسین نے خود جنگ نہیں کی تھی، ان پہ جنگ لادی گئی تھی، ان کے اوپر سونپی گئی تھی. یزید ظالم جنگ کرنا چاہتا تھا، حسین جنگ نہیں کرنا چاہتا، حسین بالکل پیسفل میسیج دے رہے تھے، جیسے اللہ کے رسول کا پورے پیغامات، پورے میسیجز پیسفل میں. اسلام کبھی کسی سے جنگ نہیں لڑتا، اسلام پہ اگر تھوک دی گئی تو جب آپ کے اوپر حملہ کریں گے تو پھر آپ جنگ کریں گے. مولا حسین تو لاسٹ مومنٹ تک اس کو بتا رہے تھے. کل جب بات ختم ہوئی تھی اس وقت یہی تو بات تھی کہ امام نے ظالم عمر سعد سے پوچھا تھا کہ تو مجھ سے جنگ کیوں کر رہا، وائے، میں نے کیا کیا، کیا میں نے حرام کو حلال کیا، کیا میں نے حرام کو حلال کیا، یہ بولنا ہی کافی ہے کہ مولا حسین اسلام کو نافذ کر رہے تھے، یزید نے حرام کو حلال کیا. مولا حسین نے کہا کہ کیا میں نے حرام کو حلال کیوں لڑ رہا تجھے، تو اس کا جملہ کیا تھا، وہ ظالم نے کہا کیا تھا، بغزل لیوی، آپ کے باپ کے بغز، یعنی مولا علی علیہ السلام کے بغز میں جنگ، ولایت کے اگینسٹ میں یہ جنگ. مولا نے فوراً آستین کو الٹ کے کہا تھا کہ اب مجھ پر جنگ واجب ہو گئی، اس لیے کہ میرے بابا نے ہمیشہ حق کے لیے آواز بلند کی. پوری زندگی میرے مولا کی 63 ایئرز کی لائف میں علی نے صرف اسلام کے پروٹیکشن میں تلوار نکالی، ورنہ نہیں نکالی. وہ علی کہ جو قاتل مرو و اندر ہو، جو فاتح بدر و حنین ہو، وہ علی کبھی میرے مولا نے ہمیشہ اسلام کے پروٹیکشن کے لیے، اسلام کو بچانے کے لیے، پیغام رسول کو بچانے کے لیے علی نے جنگ کی، بس. اور لا الہ الا اللہ کو نافذ کرنے کے لیے مولا نے جنگ کی پوری زندگی. اسلام کے بچانے کے علاوہ کچھ نہیں تھا، مولا کی زندگی کا ایک ہی مشن تھا کہ ہر آدمی لا الہ الا اللہ بولے، ہر آدمی اللہ کی وحدانیت کا اعلان کرے. اس مشن کے تحت میرے مولا ہر طرف سے دشمن ہو گئے تھے، ہر طرف سے علی کے دشمن ہو گئے تھے، جس کی وجہ سے ظالم عمر سعد عاشورے کے دن بولتا ہے بغزن لے ابھی آپ کے بابا کے بغز میں ہم جنگ لڑے. تب پتا چل گیا کہ کربلا ولایت امیر المومنین کے خلاف آئی تھی، کربلا یہ چاہتی تھی کہ ولایت امیر المومنین ختم ہو جائے، اور حسین نے ولایت کو قائم کر دیا. مولا حسین نے جنگ لڑ کے دنیا کو بتا دیا کہ ولایت علی اب ختم نہیں ہو سکتی. اور تو جتنی جنگیں ہوئی صرف مولا کی دشمنی میں ہوئی، اور کربلا جیسا مارکہ دشمن امیر المومنین میں یہ ظالمین آئے تھے اور ایک جگہ جمع ہوئے تھے. क्या हुआ, जलील और रुस्वा हो गए, हमेशा के लिए खत्म हो गए। जो भी अली के खिलाफ आया आज उसका नाम और निशान नहीं, मिट गए, मिट गए। जितना मैं नाम नहीं बोलता, जितने जालिमीन हैं मिट गए, खत्म हो गए। इसलिए खत्म हो गए कि उन्होंने हक के खिलाफ आवाज बुलंद की और अली हक के साथ है, अली ने हक को नाफिज किया है। दोस्तों या सार अल्लाह अपने सारे वल वितरण मोतर, ऐ मौला हुसैन जिसके साथ आपने जंग की उसके साथ हम भी करेंगे, ये हमारा मिशन है, बनाना मिशन। लंदन के यूथ को बोला जो सुन रहा मुझे इस वक्त एलिवेंट चैनल के ऊपर, तुम्हारा जिंदगी का मिशन रहना कि हम हक का साथ देंगे, हक को नाफिज करेंगे जैसे मौला हुसैन ने नाफिज किया, अपने अपने तरीके से, अपने अपने मकसद के तहत, अपने अपने स्टाइल से आप हक को नाफिज, घर से शुरू करो, घर से शुरू। आई ऑलवेज से दिस वर्ड कि हर आदमी अगर कोशिश करे, हर औरत अगर कोशिश करे कि घर से इस्लाम शुरू करे, तो पूरी दुनिया में हर शिया का घर हक के साथ होगा, कोई ऐसा काम नहीं होगा। माहौल कितना अच्छा हो जाए, हर घर मौला के चाहने वालों का घर बन जाए, जबान से नहीं, काम करके। जो डे टू डे लाइफ के हमारे प्रॉब्लम्स है ना, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते, मसले हल हो सकते जब आप कोशिश करते, जब आप ट्राई करते। हक का साथ दोगे ऑलवेज तुम्हारे साथ, अल्लाह है तुम्हारे साथ, मौला है, इमाम तुम्हारे साथ है, जमाने का इमाम मौजूद है जो हमको देख रहा। और बस दुआ ये करते रहो कि हमको मौका मिले, अल्लाह हमको चांस दे, अल्लाह हमको तौफीक दे कि हम नुसरत इमाम मौला हुसैन की, इमाम की नुसरत करें। या अय्याम अज़ा, ये दौर अज़ा, ये मुहर्रम का पीरियड हमारे बेदारी करता है, हमारे कॉन्शियस को हिलाता है कि ये करबला, करबला का अय्याम है, करबला के अय्याम है। अब मैं आपसे सिर्फ ये पूछ रहा कि पहली मुहर्रम से आपने जिक्र हुसैन किया और आज आठ मुहर्रम हो गई, आठ मुहर्रम हो गई, आठ दिन से मुसलसल मेरे मौला हुसैन का जिक्र कर रहे, आठ दिन से मुसलसल घर में बाहर जिक्र हुसैन हो रहा, कोई लाइफ में चेंज आया, कोई फिक्र बदली, कोई सोच बदली? क्या तुम्हारे जहन में ये आया घर से निकलो ऑफिस के लिए तो जहन में करबला रहना, घर से निकलो तो कम से कम अय्याम अज़ा में ये आदत डालो, ये आदत डालो, घर से जब निकलो तो मौला हुसैन को सलाम करके निकलो, तो तुम्हारी फिक्र बदली। सलाम अलैका या अबा अब्दुल्लाह हुसैन, सलाम अलैका या अबा अब्दुल्लाह हुसैन, ये कह के निकलो, मौला हुसैन को सलाम करो, सलाम करके बाहर जाओ। इसलिए कि ये दिनों में अगर तुम सलाम करते रहोगे दो महीने आठ दिन, तो तुमको आदत हो जाएगी, आदत हो जाएगी, फिर पूरा साल करोगे, पूरा साल सलाम करके बाहर निकलोगे। मैं आपसे बोल रहा, रिक्वेस्ट कर रहा, आप ट्राई करके देखो, ट्राई करके देखो कि इमाम को सलाम करके निकलने का फायदा क्या है। यहां तक कहा गया कि अगर तुम रिस्क की तलाश में निकल रहे, वो शख्स रिस्क की तलाश में निकल रहा इमाम को सलाम करके, तो उसके रिस्क का जामिन हुसैन इब्ने अली हो जाते। अरे जिसके रिस्क का जामिन मेरा मौला हुसैन हो जाए, उसका रिस्क रुक सकता, ऑफिस में ले ऑफ हो सकता, उसका बिजनेस डाउन हो सकता, कब कुछ नहीं होगा। ट्राई करो कि मौला हुसैन और बेहतरीन अय्याम, ये अय्याम तो आपको सलाम करना ही है। और एक बात बोल, घर का हर बच्चा करे, हर बच्चा करे, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, अगर स्कूल को हॉलीडे है तो घर में बच्चे हैं ना, तो जब उठते बच्चे मेरी तरफ देखो, लुक एट मी, बच्चे उठते हैं माँ के पास आते, गुड मॉर्निंग बोलते, विश करते। मैं मासूम बच्चों की बात कर रहा हूँ, बड़े नहीं, बड़े तो करते ही। बच्चे आ रहे मुहर्रम है, उठ के आ रहे तुम्हारे पास, जैसे ही माँ के पास आए उसने कहा गुड मॉर्निंग, तुम गुड मॉर्निंग का जवाब दो, कोई बात नहीं, उसके बाद बोलो बेटा जैसे सलाम अलल हुसैन, या ये बोलो सलाम अलैका या अबा अब्दुल्लाह, बच्चे तो बोल सकते सलाम अलैका या अबा अब्दुल्लाह। तो बच्चे की जबान से मौला हुसैन का सलाम सुबह सुबह हो रहा, तो आप सोचो कि आपके घर में माहौल कितना अच्छा हो जाएगा। हर लड़का लड़की सलाम करे और जोर से करना, माँ करना, बच्चे करते, तो इस तरह घर का माहौल बनता जाता। जिस घर में आप जुमले सुनो, जिस घर में मौला हुसैन को ज्यारत रोज पढ़ी जाती है, उस घर की परेशानियां दूर हो जाती है। तुम चाहते हो सुकून आए घर में, तुम चाहते हो कि पीस आए घर में, तुम चाहते हो कि बिल्कुल सुकून मिल जाए, तो इमाम हुसैन को सलाम करो। आदत डालो बच्चों में, सिर्फ ये बोल रहा, बच्चों को आदत डालो। आज तुम करोगे, करवाओगे, 8 दिन 10 दिन तक वो करते रहेंगे। जैसे वो आके गुड मॉर्निंग बोल रहे, जैसे आके वो तुमको विश कर रहे, तो उसी तरह वो इमाम हुसैन को विश करिए। वो पूछो, बच्चे पूछे कि आप ये क्या है, इस मतलब क्या है, तो आप उनको समझाओ कि तुम आके मुझे विश कर रहे ना, गुड मॉर्निंग बोल रहे ना, तो तुम अब इमाम हुसैन को गुड मॉर्निंग बोल रहे, तो उसको इस तरह बोल रहे, सलाम सलाम अलैक हुसैन, बस सलाम अलैक का या अब्दुल्ला। ये बताओ कि हम, तुम मुझे विश कर रहे और हम मिलके मौला हुसैन को विश कर रहे, इसलिए कि ही इज लाइक अवर फादर, ही इज अवर फादर, ही इज रियल अवर फादर, बाप है, माँ है, सब कुछ मौला हुसैन। तो रोज सलाम, आप सोचो आपके घर से, प्लीज मेरी तरफ देखो, रोज आपके घर से इमाम हुसैन को सलाम जाए एवरी डे, क्या लाइफ में चेंज नहीं आएगा? मौला हुसैन तुमको दुआ नहीं देंगे, मौला हुसैन तुम्हारे सलाम का जवाब नहीं देंगे, जब जवाब देंगे तो देख के तुम्हारे घर को देख के देंगे, लंदन में तुम्हारे घर को देख के देंगे, तो उस घर में कितनी बरकत होगी जहां हुसैन की निगाह पड़ गए। हम चाहते क्या है? हम यही तो चाहते हैं कि मौला हुसैन की निगाह हमारे ऊपर पड़े, मैं यही चाहता, एक नजर करम मौला हुसैन के हमारे ऊपर आ गया, बस सारी बीमारियां दूर हो, सारी परेशानियां दूर हो। अगर सलाम करो तो कोशिश करो, तो उससे क्या होता, बैक ऑफ योर माइंड तुम्हारे बच्चों के, तुम्हारे जहनों में मौला हुसैन आते। और मुहर्रम के अय्याम में कितने दिन रह गए दोस्तों? 8 दिन गुजर गए, सिर्फ 2 दिन रह गए। अब भी सलाम नहीं करोगे, अब भी हुसैन के मकसद को नहीं समझोगे, हुसैन के मकसद को समझो। कल मैंने आपसे कहा था, जब बात रोकी थी, मैं वहीं से लेके जा रहा हूँ कि इमाम हुसैन ने जालिम उमर साहब को बुलाया और बुला के कहा कि मैं तुझसे बात करना चाहता हूँ। उस जालिम ने कहा कि मेरा रसूलल्लाह हुक्म करे। इमाम ने कहा था कि ये जो फौज है, इनसे इनकी आवाज़ों को बंद करा दे। तो उसने कहा था कि इम्पॉसिबल है, मैं नहीं करा सकता, अगर मैं इंसानों की आवाज़ों को बंद भी करवा दूँ तो जानवरों की कैसे बंद करवाऊँ। तो उस वक्त मौला हुसैन ने सिर्फ एक निगाह डाली, पूछा था क्या मैं बंद करवा दूँ, उसे कहा था ये आपका इख्तियार है। इमाम ने जमीन से लेकर आसमान तक एक निगाह डाली, निगाह का डालना था, चलते हुए नफस रुक गए, सब खामोश हो गए, पिन ड्रॉप साइलेंस हो गया करबला के मैदान में, सन्नाटा छा गया। लेकिन मासूम बच्चों की अलतश की आवाजें बुलंद थी, जो खयामत है। इमाम ने उस वक्त कहा, पूरे लश्कर को एड्रेस किया, यहां से बात शुरू हुई, पूरे जालिम यजीद के लश्कर को एड्रेस किया करके कहा, तुम जानते हो मैं कौन हूं? मैं हुसैन इब्न अली हूं, मैं रसूल का नवासा हूं, ग्रैंडसन ऑफ प्रॉफिट हूं, मैं अली और फातिमा का बेटा हूं, मैं मीना का बेटा हूं, मैं जमजम का बेटा हूं, मैंने इस्लाम में कोई चेंज नहीं लाया, मैंने हराम मोहम्मदी को हलाल नहीं किया, वही इस्लाम है जो मेरे नाना का इस्लाम, जो मेरे नाना ने दीन को पहुंचाया था, वही दीन के लिए मैं आज तुम्हारे सामने आया, अपने टोटल इंट्रोडक्शन करवाया कि मैं कौन हूं। कि डे ऑफ जजमेंट में ये जालिमीन अल्लाह से ना बोले कि हम नहीं पहचानते थे हुसैन थे, रसूल के नवासे थे, हर के कानों में ये आवाज पहुंची कि मैं रसूल का नवासा हूं, मैं रसूल का नवासा हूं। तारुफ करा के अपने मकसद को पेश करके मौला हुसैन पलट के अपने खैमे में आ गए। तो असाब ने पूछा, मौला आपने इंतजार क्यों नहीं किया, मौला आपने उनके जवाब का इंतजार क्यों नहीं किया? तो इमाम हुसैन ने अपने चाहने वालों से कहा कि वो मैं अपना तारुफ कराना चाहता था, बस मैंने तारुफ करा दिया अपना, उन तक पहुंच गया पैगाम कि मैं हुसैन इब्न अली। उन्होंने कहा, मौला लेकिन आप उनके जवाब का तो इंतजार करना था। दोस्तों जब 2 दफा असाब ने कहा तो उस वक्त मेरे मौला हुसैन का जुमला ताजुहूर इमाम हर शिया के कॉन्शियस को हिलाता है, हर शिया को, मैं सिर्फ शिया की बात कर रहा हूं, मौला हुसैन के चाहने वाले, बेदार करता है हर शिया के कॉन्शियस। गौर से सुनना हुसैन का जवाब, मैंने क्या कहा, 61 हिजरी से लेके ताजुहूर इमाम, किसी शहर का हो, किसी मुल्क का हो, کوئی زبان بولتا ہو کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر شیعہ نے حیدر کرار ہے, مولا کا شیعہ ہے, تو اس کے لیے یہ پیغام ہے. امام نے کیا کہا جب انہوں نے کہا کہ, تو امام نے کہا میں نے اپنی حجت کا تمام کیا. انہوں نے کہا مولا اگر آپ نے جواب کیوں نہیں سنا, تو امام نے پلٹ کر اپنے چاہنے والوں کو دیکھ کے کہا کہ سنو ان کے پیٹوں میں حرام بھرا ہوا ہے, میری بات کا اثر نہیں ہوگا. یہ 61 ہجری کے لیے نہیں تھا, یہ 61 ہجری کے لیے نہیں تھا. تا ظہور امام جس کے بھی پیٹ میں حرام رہے گا امام کی بات سمجھ میں نہیں آئی. افسوس افسوس, ویری سیڈ ویری سیڈ. میں یہ نہیں بولتا, پلیز ڈونٹ مس انڈرسٹینڈ, کہ لوگوں کے دلوں میں پیٹ میں حرام بھرا ہوا ہے, نہیں میں یہ نہیں بول رہا. میں یہ بول رہا اگر ہے, اگر حرام کھا رہے ہو تو اسٹاپ اٹ, اسٹاپ اٹ. اس لیے کہ پیٹ میں حرام رہے گا, امام انشاءاللہ جب ظہور کریں گے اور آواز آئے گی کہ جا الحق وزاق الباطل ان الباطل کانا ذوقا, حق آ گیا باطل چلا گیا, باطل کو اسی طرح نیست نابود ہونا, تو اس وقت تمہارے کانوں میں آواز نہیں آئے گی, تم کو اثر نہیں ہوگا. جیسا یہ ظالمین کو اثر نہیں ہو رہا تھا پیٹوں میں حرام رکھنے سے, اثر نہیں ہو, اور تم نصرت امام کو نہیں جاؤ. پلیز میں ریکویسٹ کر, 8 محرم کی مجلس اہل بیت چینل کے پلیٹ فارم سے بولو. مطلب میرا یہ نہیں ہے کہ خدا نہ خواستہ, لاکھ بار خدا نہ خواستہ کوئی مولا کا چاہنے والا حرام کھائے. حلال کھاتے ہو لیکن حلال کو حرام بنا دیتے ہو. ایک جملہ بولتا بیداری کے لیے کہ حق مظلوم بی بی زہرا دو, نہیں دو گے تو پھر تمہارا مال حرام کا ہو جائے گا, بس اس سے زیادہ نہیں. حق مظلوم بی بی زہرا میں بھیک مانگ رہا, میں اپنے لیے نہیں بول رہا, اپنے لیے نہیں بول رہا, آپ کے فائدے کے لیے بول رہا. اگر میں 8 محرم کی مجلس پڑھوں اور میں یہ نہ بولوں, یہ پیغام نہ دوں, تو پھر میں نے کیا کیا؟ کوئی ایک لڑکا یا لڑکی ہزاروں میں سن رہے اس وقت اہل بیت چینل پہ ماشاءاللہ, کوئی ایک لڑکا لڑکی بھی اگر ڈیسائیڈ کر لے 8 محرم کو کہ آج کے بعد میں اپنی ارننگس میں سے حق مظلوم بی بی زہرا دوں گی یا دوں گا, آج کی میری مجلس کامیاب ہو گئی. کہ کیز آئی کین سے ٹو مائی مولا کہ مولا جو آپ کا پیغام تھا وہ میں نے پیغام پہنچایا, اشہد ان کا قد اقمت الصلاۃ واتیت الزکاۃ وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر. یہ امر بالمعروف ہے, مقصد کربلا یہ ہے, امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر, یہ لازم ہے دوستو, یہ لازم ہے پہنچانا, اس لیے کہ اس سے آپ کا فائدہ ہے, یو آر گوئنگ ٹو بینیفٹ. کہ ہم مولا حسین کی آواز سنیں گے, ہم مولا حسین کی نصرت کریں گے, ہم مولا حسین کا ساتھ دیں گے, پھر آپ بولیں یا سار اللہ و ابن سارے, تو امام حسین تمہارا تمہاری صحیح کو تمہاری صحیح کو قبول کریں گے. مقصد محرم سمجھو, مقصد مجلس سمجھو, کہ مجلس کا مقصد ہی ہے کہ کوئی ایک نہ ایک پیغام امام حسین کا پہنچے. بس آپ سوچو کہ اتنا بڑا کارنامہ ہوا, اتنا بڑا یہ کارنامہ ہوا, لیکن حسین ڈٹے رہے نانا کے دین کو بچانے کے لیے, اور ایسی قربانی تھی, ایسی قربانی تھی کہ قیامت تک اب نام حسین ہے, دین حسین بچ گیا. خواجہ اجمیری کہتے ہیں کہ حقا کے بنا لا الہ, حق تو یہ ہے کہ بانی اسلام اب حسین ہو, اب حسین کا اسلام ہے. 60 ہجری تک محمد مصطفیٰ کا اسلام تھا, اور 61 ہجری 10 محرم سے اب اسلام قیامت تک حسین ابن علی کا, ان کی محنتوں کا نتیجہ. 124,000 نبیوں کی محنتوں کو بچایا, اس کو غلط مت سمجھ, 124,000 نبیوں کی محنتوں کو بچایا, اور بچا کر اگر نہیں ہوتا تو آج پورے یزید کے فالوور ہوتے, پورے یزید کے فالوور ہوتے, جمعے کی نماز وینسڈے کے دن پڑھ کے وہ خوش ہوتے, عورتوں کے پیچھے نماز پڑھتے, اس لیے کہ وہ جائز ہو جاتا. حسین نے یزید کے سارے مقصد کو کچل دیا, اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ذلیل و رسوا کر دیا, اور نافذ کر دیا اسلام کو جو ان کے نانا کا دین تھا. یہ ہماری بھی ذمہ داری, یہ यासार अल्लाह वब्बसारी वाल मित्रल मौत आई हुसैन, जिसके साथ आपने जंग की उसके साथ हम भी जंग करें। ये मकसद को सामने लेके चलो, इस बात को साथ लेके चलो कि हमको हुसैन का साथ देना है, और चेक करो कि इस्लाम की कौन सी चीज़ें हैं कि जिसको यजीद ख़त्म कर रहा था, उस चीज़ पे हमको अमल करना। उसको हिजाब नहीं चाहिए था, उसको नमाज नहीं चाहिए था, उसको कुछ नहीं चाहिए था। जब वो दरबार में आता था जालिम, हाथ में ग्लास ऑफ वाइन लेके आता था और किसी को बोलने नहीं देता था, जालिम शेव करता था, दाढ़ी को मूंदता था, ड्रिंक करता था, गैम्बलिंग करता था, किसी औरत की इज्जत बाकी नहीं थी। इस्लाम के सारे रिश्तों को पामाल कर दिया, कोई रिश्ता नहीं था उसके पास, ना माँ का, ना बहन का, ना फूफी का, ना खलक, सारे हराम करने लगा था। और किसी में जुर्रत दे दिया, क्या बातें करते लोग, जुर्रत नहीं थी, करेज नहीं था बोलने का, करेज नहीं था बोलने का कि यजीद ये क्या कर रहा तू, व्हाट आर यू डूइंग, तू क्या कर रहा है। ये सोचो, वो एक मौला हुसैन थे जो दीवार की तरह इस्लाम को बचा लिया खड़े होके, कहा कितने भी तूफान आ जाए, कितने भी साइक्लोन्स आ जाए, कितने बड़े जालिम भी आ जाए, इस्लाम को खत्म नहीं कर सकते। इसीलिए मौला ने, अब सोचो, यजीद को इतना ख्याल नहीं था कि खाने काबा में मौला हुसैन जब हज करने के लिए आए थे, कभी सोचा, बस सुन लिया कि हज को उमरे में बदल के हुसैन मक्के से निकल गए। क्यों? यजीद ने बाकायदा पूरी टीम्स को भेजी थी हजारों की तादाद में हाजियों के लिबास में, हाजियों के लिए। आप इमेजिन करें, इस्लाम ये था, ये इस्लाम था। हज के लिए क्या, उमरे के लिए क्या, मक्के की जमीन पर एहराम बांधने के बाद जब आप खाने काबा जाते हो, अल्लाह हमको ज्यारत नसीब करे, उमरा और हज नसीब करे, फिर जाते हो तो सारी शरीयतों में इस्लाम, इस्लाम यह कहता कि तुम एक चूंटी को नहीं मार सकते। चूंटी समझते हो, एंट, एंट कितनी होती, इतनी सी होती, उस एंट को जानबूझ के नहीं मार सकते। मिसाल के तौर पर तुम एहराम बांधे हुए मैदान में, मिसाल दे रहा, मैदान अरफा में दिन भर बैठे हुए आमाल कर रहे, इबादत कर रहे अल्लाह, सामने से चूंटी जा रही, एंट जा रही, तो तुम ऐसे लेके नहीं मार सकते, नहीं मार सकते, वो तुमको नुकसान नहीं पहुंचा रही, वो जा रही सामने से। एक चूंटी की जिंदगी की हिफाजत है वहां पे, काबे में जिंदगी है, वहां पे जिंदगी है। एक चूंटी को आप मार के उसकी जिंदगी को खत्म नहीं कर सकते, तुम्हारे अख्तियार में, तुम मार सकते लेकिन तुम नहीं मार सकते। और जालिम यजीद ने क्या किया था, जालिम यजीद ने क्या किया था, तैयार किया, टोलियों को भेजा, मुसलमानों को भेजा, सो कॉल्ड मुस्लिम, सो कॉल्ड मुस्लिम, सिर्फ दाढ़ी रखने से मुसलमान नहीं होता, मुझे काटने से मुसलमान नहीं होता, अमल करके बताओ, पैगाम रसूल को पहुंचाओ। आज 8 मुहर्रम हो गई, तो उसने क्या किया, एक चूंटी यजीद ने एक लश्कर को तैयार किया, कहा कि तुम जाओ एहराम पहनो हज का, सोचो आप एहराम पहनो हज का, उसके बाद मक्का जाओ और जाकर जहां पे जब हुसैन तवाफ करे, दौरान तवाफ मेरे मौला हुसैन को शहीद कर दो, कत्ल कर, काबे में हुसैन को शहीद कर दो, तखद्दुस से काबे को खत्म कर दो। यानी उसके जहन में यह है ही नहीं कि काबा अल्लाह का घर है, काबे में आप चूंटी को नहीं मार सकते, वहां अमन की जगह है, वहां पे नवासे रसूल के खून को बहाने के लिए कहा कि तुम घेर लेना तवाफ के दौरान और हुसैन को वहीं खत्म कर दे। इमाम तो जानता है, कयामत तक के हालात को जानता है, अली का बेटा है जो दिलों के राज से वाकिफ है, जो हालात से वाकिफ है। मौला ने जब देखा उन जालिमों को कि आ गए मक्के में, मौला ने इरादा किया कि मैं हज को उमरे में बदल के यहां मक्के की जमीन से बाहर निकल जाऊंगा। अजीजों, कोई हुसैन के दिल से पूछे कि मौला कैसा निकले, क्या खयामत थी मौला हुसैन के दिल पर। वारिस काबा है, वारिस काबा है वो हजी क्या जो इमाम के बगैर हो। मौला वहां पहुंचे और खुतबा दिया, 2 महीने से 3 महीने से मौला वही थे शाबान से मक्के में, खुतबा दिया। मुसलमानों जमा हो गए कि फर्जंद रसूल आए, कहने लगे मौला क्यों जा रहे हैं? तो इमाम ने कहा कि जालिम यजीद ने लोगों को भेजा है और दौरान तवाफ ये मुझे कत्ल करना चाहता है, मैं काबे के तखद्दुस को बाकी रखना चाहता, काबे के तखद्दुस को बचाना चाहता। अगर उस वक्त मेरा मौला हुसैन शहीद हो जाता तो काबा खत्म हो जाता, तखद्दुस से काबा खत्म हो जाता। फायदा क्या होता कि जिस जमीन के ऊपर जो वारिस काबा है, वारिस काबा आप हैं, हम हैं, अल्लाह की हुज्जत है मौला हुसैन, अल्लाह की हुज्जत है, अल्लाह का महबूब तरीन बंदा बंदा है, अल्लाह का महबूब तरीन बंदा हुज्जत है, हुज्जत है अल्लाह की, खत्म हो जाता, तखद्दुस खत्म हो जाता। काबा रहता है ढांचा रहता जैसा पहले था। उस वक्त हुसैन ने काबे को बचा लिया, काबे के तखद्दुस को बचाया। अफसोस ये दोस्तों जो लोगों के पेटों में हराम था वो आए सुने और चले गए, आए सुने चले गए, साथ नहीं दिया। याद रखो पेटों में हराम रहेगा तुम कभी भी नुसरत इमाम नहीं कर सकते। आई एम टेलिंग यू उस वक्त ना आज। मेरी रिक्वेस्ट है सारे सुनने वालों से कि नुसरत इमाम के जज्बे को पैदा करो, उस जज्बे को पैदा करो कि तुम्हारे दिलों में यह ख्वाहिश हो। देखिए मजलिस करना यह भी नुसरत इमाम है, तबरुक का बांटना यह भी नुसरत इमाम है, मोमिन की मदद करना यह भी नुसरत इमाम है, ये सारे इस्लाम की वो है। मदद करना यह भी नुसरत इमाम, न्याज का इंतजाम करना यह भी नुसरत इमाम, किसी मोमिन की मुसलसल हेल्प कर रहे भी नुसरत इमाम, ये सारी चीजें इस्लाम का हर चीज हर नेकी इमाम की नुसरत है। रहमत इमाम में यह इमाम की नुसरत है कि जब तुम कोई नेकी करते हो, किसी मोमिन से अच्छी बात करना, अपनी बीवी के साथ ताल्लुकात अच्छे रखना, वालिदैन की रिस्पेक्ट करना, ये सारे के सारे नुसरत है इमाम। तो चेक करो ये चीजों को कि ये चीजें मैं कर रहा, ये चीजें मैं कर रहा, अगर कर रहे तो बहुत अच्छा, ये इमाम की नुसरत कर रहे, इमाम के पैगाम को दुनिया तक पहुंचा, और इमाम को पैगाम को पहुंचाना ये हमारी जिम्मेदारी, वन ऑफ द रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ मोमिन, वन ऑफ द रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द मोमिन कि इमाम के पैगाम को हम पहुंचे, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। ये हायर ओकल्टेशन में, ये गैबत इमाम में, ये तुम्हारी वन ऑफ द जिम्मेदारी है कि तुम इमाम की नुसरत करो, इमाम की हेल्प करो, इमाम के पैगाम को दुनिया तक पहुंचाओ। इसलिए कि इमाम के पैगाम को पहुंचाना ये सीरत शहजादी ज़ैनब, शहजादी उम्म कुलसूम और चौथे इमाम। जालिम तो यही चाह रहा था, यजीद तो यही चाह रहा था कि करबला हो और दफन हो जाए, दफन हो जाए। इसीलिए मौला हुसैन ने खाने काबा में जान नहीं दी, हुसैन काबे में जान दे सकते थे, शहीद हो जाते, लेकिन मौला ने कहा कि मैं काबे में जान नहीं दूंगा, वहां पे नहीं दूंगा, काबे को बचा लूंगा, इसलिए कि वारिस काबा मैं अब जुमले सुनना मेरे, मैं अपने बाबा की तरह, बाबा को जिसने शहीद किया असल खातिल के चेहरे पे नखाब आ गया, असल खातिल के चेहरे पे नखाब आ गया। इब्ने मुल्जिम जालिम तो जहन्नमी है, उसने तो जुल्म अजीम किया, वो जहन्नम में है, लेकिन और एक कातिल था जिसके चेहरे पर नखाब। उसी तरह मौला हसन अलैहिस्सलाम ज्यादा ने जहर लिया, वो तो जहन्नम में जल रही, वो तो जहन्नम चली गई, लेकिन असल खातिल के चेहरे पे नखाब आया, जो असल खातिल था उसके चेहरे पे आज तक नखाब है। उसके बाद मौला ने कहा मेरे बाबा ने मस्जिद में जान दी, मेरे भैया ने घर में मदीने में जान दी, मैं ना मस्जिद में दूंगा ना घर में दूंगा, मैं एक ऐसी ओपन प्लेस पे, एक ऐसी जगह पे आके जान दूंगा जहां खातिल बेनखाब होके मेरे सामने आ जाए, दुनिया देख ले कि खातिल कौन है। आज किसी से पूछो कि हुसैन का खातिल कौन है तो हर आदमी पढ़ा लिखा बोलता यजीद है, एक जाहिल भी बोलता यजीद। यजीद को इतना हुसैन ने बदनाम कर दिया, इतना बदनाम किया, इतना उसके चेहरे से नखाबों को उल्टा, जितने नखाब उसके चेहरे पे थे उसको उल्टा और उलट के दुनिया के सामने उस जालिम के चेहरे को बता दिया कि देखो ये यजीद है कि जिसने हुसैन को शहीद किया। तो आपका भी फर्ज है कि यजीद के नाम को या उसके मकसद को आप भी इसी तरह पामाल करें, खत्म कर दें, कुचल दें, पामाल नहीं कुचल दें, यजीद के मकसद को कुचलो, यजीद के मकसद को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दो कि अब कोई जालिम यजीद उठ ना पाए, यजीद जैसा जालिम अब उठ ना पाए, उसकी फिक्र ना उठे। देखिए यजीद जालिम तो जहन्नम में जल रहा, लेकिन उसकी फिक्र अगर कोई किसी के पास उसकी फिक्र है तो उसकी फिक्र को खत्म करो। ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मोहरम कि उस सोच को, यजीद की जो सोच थी उस सोच को तुम क्रश करो, ऐसा क्रश करो कि फिर वो सोच सामने ना आने पाए। ये नुसरत है इमाम या सार अल्लाह अपने सारे कि मौला आपने जिसके साथ जंग की, अब आज का शिया 61 हिजरी के यजीद के साथ नहीं कर रहा, यजीदियत के साथ जंग कर रहा, यजीदियत के साथ। यजीद का जो मकसद था, जो उसकी सोच थी, जो उसका अमल था, उस अमल को खत्म करने के लिए, उसको हमेशा हमेशा के लिए खत्म करने के लिए आपका जिम्मेदारी, आपकी जिम्मेदारी, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप मौला हुसैन के मकसद को दुनिया तक पहुंचाओ, मौला हुसैन के मकसद को दुनिया तक पहुंचाओ और दुनिया को बताओ कि मौला हुसैन ने किस तरह जंग की और किस तरह पैगाम हुसैन को दुनिया तक पहुंचाया। सलवात पढ़ ले मोहम्मद व आले मोहम्मद। इस वक्त मैं बॉम्बे में हूं और मेरे मजालिस चल रहे हैं, मेरे अशरे चल रहे हैं, यहां से मैं अहले बैत चैनल लंदन के लिए पढ़ रहा। मौला आप सबको आबाद रखे। आज 8 मुहर्रम है, आज पूरी दुनिया में एक ऐसे शहीद का मातम है, एक ऐसे अल्लाह के बंदे का मातम है जिसकी पूरी जिंदगी डेडिकेशन के साथ मौला हुसैन की खिदमत करते हुए, जो हुसैन के साए की तरह चलते थे, जिसके जिंदगी का एक ही मकसद था कि मैं मौला हुसैन को प्रोटेक्ट करूं, मैं मौला हुसैन के साथ बिल्कुल साथ साथ रहते थे। आप समझ गए मेरा इशारा किधर। अब मेरा जुमला सुनना, हम ये मेरे टॉपिक पे वो ये इतना रिलेटेड है, जुमला सुनो। मौला अब्बास नहीं होते तो दुनिया को पता नहीं चलता इताते इमाम क्या होती है। या सारा अल्लाह व अपने सारे ये इताते हम कह रहे ना, हम करेंगे, हम क्या करें। मौला अब्बास की जिंदगी से सीखो, खबर बनी हाशिम की जिंदगी से लो ये पैदा कि मौला अब्बास ने इताते इमाम के मफहूम को वाजे किया, अपनी सारी ख्वाहिशात को कुर्बान कर दिया मौला हुसैन की मर्जी के ऊपर। मैं क्या बोल रहा हूं आपसे, अपनी सारी ख्वाहिशात को खत्म कर दिया मौला हुसैन की मर्जी को। दोस्तों अबुल फजल उस हस्ती का नाम है कि जो सैदानियों के दिल की ढारस था, सैदानियों के दिल की ढारस था, जो जिसका वजूद बीवियों को दिल को सुकून पहुंचा रहा था। जब तक अब्बास जिंदा थे बीवियों को बड़ा सुकून था, अब्बास के बाद सारी सैदानियों को यकीन हो गया था कि हमारी चादर का मुहाफिज चला गया, अब हिफाजत करने वाला कोई नहीं। इतना मौला अब्बास सारी बीवियों का मुहाफिज और इमाम का मुहाफिज जाहिरी तौर पर साहिब की तरह रहे। अब्बास आज भी अली की तरह मुश्किल कुशा है, अली की तरह। मैं आज मौला अब्बास की एक नज़र आपको देता, ये जरूर करना हर हाजत के लिए, मैं खुद करता हूँ। कोई तुम्हारी हाजत हो, कोई तुम्हारी परेशानी हो, मौला अब्बास की नज़र करो। मौला अब्बास की नज़र बहुत बाबरकत है, बहुत मुजर्रब है। दोस्तों مولا عباس کی نظر کے لیے کہا کہ کوئی حاجت ہو آپ اپنے اپنے گھر کا شہر کا طریقہ ہے, خورمہ بناؤ, روٹی رکھو, پانی ضرور رکھو, سفرہ بچھاؤ اور مولا عباس کی نظر دو. مولا عباس کی نظر کے ساتھ ایک گلاس میں چلڈ واٹر رکھو اور بی بی سکینہ کی نظر, ایک گلاس میں دودھ رکھو اور شہزادے علی اصغر کی نظر رکھو اسی سفرا میں, اور ایک بال میں جو خورمہ مولا عباس کے لیے بنا رہے اسی طرح وہ بنا کے ان کی ماں بی بی ام البنین کی نظر دو, آخر میں کچھ مٹھائی رکھو, کوئی بھی فروٹ رکھو, شہزادی ام کلثوم کی نظر, ایک ہی سفرے پہ سب رکھو, پانچ مرتبہ سلوات پڑھو, اللہم صلی اللہ علی محمد وعلی محمد وانجل پڑھو, ایک مرتبہ سورہ الحم پڑھو, تین مرتبہ سورہ کھل پڑھو اور تین مرتبہ سورہ کوثر پڑھو, پھر پانچ سلوات پڑھ کے ساروں کی بارگاہ میں حاضر کر دو, مولا حسن ہے, مولا حسین ہے, اور یہ بیویوں کو حلیہ کر دو. آپ یقین کرو میری بات کہ ایسا مجرب عمل ہے, ٹریولنگ کے لیے, بچوں کے ایگزامیشنس کے لیے, لڑکی کی شادی کے لیے, رسک کے لیے, بیماریوں کے لیے, یہ نظر بہت مجرب ہے. یہ کرو, مولا عباس کی نظر آج بھی آج بھی آج بھی آج بھی. کربلا مولا کا ایک عجیب واقعہ ہے, آٹھ محرم کا ہے اسی لیے میں پڑھ رہا ہوں. آج کربلا مولا اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے, اتنا شاندار ماں بہن حرمین وہ راستہ, اس زمانے میں کچھ نہیں تھا, اس زمانے میں بیچ میں گھر تھے, جب کا یہ واقعہ بیچ میں گھر تھے, عربی لوگوں کے گھر تھے, لوگ رہتے تھے, بازار تھا, ایسا جیسا آج ماں بہن حرمین پورا ایک راستہ ہے اس وقت نہیں تھا. اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے, زیارت نصیب کرے. سلام علی الحسین ولا علی عبد الحسین ولا اولاد الحسین ولا صاحب الحسین ولا اخی ابو الفضل العباس وقتی کا شہزادی زینب شہزادی بنتی کا شہزادی فاطمہ سکینہ, یہ سلام زیارت کروائے گا تم کو انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ. تو ایک سارے لوگ تھے آٹھ محرم کو, آج بھی کربلا مولا میں جو عراقی ہے وہ مولا عباس کی حاضری دیتے, جیسا ہم انڈیا پاکستان میں دیتے, افریقہ میں دیتے, پوری دنیا میں عباس کی حاضری ہوتی ہے آٹھ محرم کو, بڑا مجرب عمل ہے. تو اس نے ایک غریب شیعہ تھا کربلا مولا, اس کی وہ بھی دسترخوان بچھاتا تھا, تھوڑا سا بناتا تھا, رکھتا تھا, اپنے دوستوں کو بلاتا تھا. آٹھ محرم سے پہلے اس نے اپنے دوستوں کو, اپنے ساتھیوں کو, اپنے رشتہ داروں کو بولا کہ کل میرے گھر پہ فلاں ٹائم پہ آنا حاضری. انہوں نے کہا ٹھیک ہے, نظر چکنے آئیں گے ضرور. اس نے نظر بنوائی, سفرا بچھایا, اور جب نظر رکھ رہا تھا اس کے دل میں خیال, عربی عرب کا بڑا مشہور واقعہ ہے, وہاں کے عالم دین, جب رکھ رہا تھا تو اس کے دل میں خیال آیا کہ میں ہر سال مولا عباس کا سفرا بچھاتا ہوں, سامنے مولا عباس ہے آج, اور نظر میں دیتا ہوں, سامنے مولا عباس کا روزہ ہے آج, میں میرے مولا عباس سے خواہش کروں گا کہ اس غریب کے گھر پہ آ کے نظر دوں. دل میں خیال آیا, کھانا رکھا, نظر کے رکھا, اٹھا, سامنے مظلوم مولا عباس کا روزہ, اللہ ہم بھی دیکھیں اپنے مولا گارا کو, مولا حسن مولا عباس, ہاتھوں کو جوڑ کے کہا آقا عباس میں ہر سال آپ کی نظر کرتا ہوں, آج بھی کی, میں نے نظر نہیں دی, نظر آپ آ کے دی, آپ کی نظر آپ آ کے دیجیے, مولا میں بہت غریب ہوں, مولا میں بہت مسکین, خواہش کی ہر خواہش کر سکتے ہیں زیارت کے لیے. آ کے بیٹھ گیا, گھر میں بیٹھ گیا, انتظار کرنے لگا کمرے میں, غریب آدمی کا گھر ہے, عراقی ہے, کربلا کے رہنے والا, اس نے جن جن لوگوں کو بلایا تھا وہ لوگ سب آ گئے. آ کے کہا نظر ہوگی, ہم کھانا کھا لیں, تو کہا نہیں ابھی نظر دینے والا آنے والا ہے. ٹھیک ہے, بیٹھ گیا, سب پوچھا بھی نہیں, پھر باہر گیا, باہر جا کے کہا مولا لوگ بھی آ گئے, مولا آپ آ جاؤ, مولا میں بہت غریب ہوں, میرے پاس آؤ اور آپ نظر دو, مولا میری عزت ہوگی, مولا میری بخشش ہوگی, آپ آؤ, سامنے ہی تو ہے, آ جاؤ, بول کے آ کے بیٹھ گیا. پھر تھوڑی دیر گزری, تھوڑی دیر گزرنے کے بعد جو مہمان آئے تھے, جو زیارت کے لیے, جو کھانے کے لیے, نظر کے لیے آئے تھے, ان مہمانوں نے کہا بھائی اگر نظر نہیں دیں گے, دینے والا بھی نہیں آیا, تو ہم کو اجازت دو, ہم جانے, ہم کو دوسری جگہوں پہ بھی جانا ہے, آج آٹھ محرم ہے,
हम जाना चाहते, इसने कहा दो मिनट ठहरो, दो मिनट ठहरिया। अब इसका दिल फट गया, दिल फट गया। ये सीधा फिर बाहर गया मौला अब्बास के रोजे को देख के, कहा मौला सारे चले जाएंगे फिर ये मेरी नजर का क्या हो रहा, मौला मैं आपसे कुछ नहीं कह रहा, मौला बस इतना कह रहा कि आप मेरे घर आओ, आके आप अपने हाथ से नजर दो, मौला मैं बहुत गरीब हूँ, आपको बीबी सकीना का वस्त, मौला आप आ जाओ। ये कहकर वो घर में आया तो देखा कि हसीन और खूबसूरत जवान बैठे, लोगों ने कहा क्या हुआ नजर देने का, तो कहा जरा ठहर जाओ, उस जवान को देखा, देख के कहा भाई जिसको बुलाया था वो तो नहीं आया, वो आप ही नजर दे लो, अब मेरी तरफ देखो। वो जवान खड़ा हुआ, पीछे सब खड़े हो गए साथ, और ये जो बानी नजर थी वो भी पीछे खड़ा गया। उसने महसूस किया कि सामने ये जो जवान नजर दे रहा ये हाथों को उठा के नहीं दे रहा बल्कि वैसे ही दे रहा। तो इसने पीछे से कांधे पे हाथ रख के कहा भाई सुनो, हम मौला अब्बास की नजर ऐसे नहीं देते, हम ऐसे देते, बस ये कहना था। आने वाले ने कहा बुलाता भी है और उस चीज का तकाजा करता है जो मेरे पास नहीं है, करबला में मेरे हाथ कट गए, वो कदमों में गिर गया कि मौला आपने इतनी तकलीफ की। अजीज ये वो गाजी है जो हर चाहने वाले की मदद करता, आपकी आवाजें बुलंद हो गई। बस सोचो कि मौला अब्बास शबे आशूर तलवार को सैकल कर रहे थे, शार्प कर रहे थे, और अली अकबर और कासिम से कहते थे बच्चों कल आधी फौज को मैं अकेले देखूंगा, आधी को तुम देखना। लेकिन रात गुजरी, सुबह से एक एक लाशा आता रहा, मौला अब्बास के दिल पे छुरी चलती रही। एक मंजिल ऐसी आई कि जब कासिम का लाशा पामाल हो गया और मोहम्मद की मैयतें आ गई, अरे कितनी आसानी से बोल दिया, घर उजड़ गया। मौला अब्बास ने हुसैन से कहा खा मुझे मरने की इजाजत दीजिए। हुसैन ने कहा बे भैया तुम हमारे लश्कर के अलमदार हो। तो अब्बास ने कहा वो लश्कर ही कहा रहा जिसका मैं अलमदार हूँ, जहाँ लश्कर गया है मैं भी जाना चाहता। अजीजों इजाजत नहीं मिली, मौला तकल्लुफ कर रहे थे। अब्बास खैमे में आए, मेरी बीवी सकीना ने आगे बढ़ के कहा चचा प्यास मारे डाल के। अब्बास ने सकीना को आगोश में उठाया और उठाकर मौला हुसैन के खैमे की तरफ चले। जब दूर से हुसैन ने यह मंजर देखा कि सकीना को लेके अब्बास आ रहे, अब अब्बास से कुछ नहीं कहा, सकीना से कहा कि बेटी आज चचा की सिफारिश कर रही हो, कल तमाचे लगेंगे तो चचा बहुत याद आएंगे, जब कानों से गोशवारे छीने जाएंगे तो चचा बहुत याद आएंगे। और यही हुआ, पहले तमाचा जब पड़ा तो सकीना ने चचा ही को पुकारा कि चचा आओ देखो आपकी सकीना के साथ ये जालिम क्या सलूक कर रहे। इमाम ने कहा कि भैया जाओ पहले सैदानियों से रुखसत हो लो। अब्बास खैमे में आए और आकर सारी बीबियों को खुदा हाफिज कहा, फिर मजलूम शहजादी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के करीब जाके सामने सर को झुका के बैठ गए। अब्बास ऐसे एहतराम करते थे जैसे माँ का एहतराम किया जाता, सर को झुका के बैठ गए। जब बैठ गए तो बीबी ने पूछा भैया क्या चाहते हो, कहा शहजादी मुझे मैदान की इजाजत। बस ये सुनना था, बीबी तड़प गई। बीबी ने अपने बाजुओं को देखा और अब्बास के चेहरे को देखा। अब्बास ने कहा शहजादी मैं आपसे इजाजत लेने आया। तो बीबी ने कहा अब्बास मेरे भैया जा रहे हो खुदा हाफिज, लेकिन एक बात सुनते हुए जाओ। 21 रमजान की रात थी, कूफा था, मेरा बाबा मेरे बाजुओं के बोझे ले रहा था। मैंने पूछा बाबा क्यों ले रहे हो, तो कहा था बेटी एक दिन आएगा कि तेरे बाजुओं में रसन बांधी जाएगी। बस दोस्तों ये सुनना था। बीबी कहती है कि मुझे यकीन था बाबा की बात पे कि वो वक्त आएगा, लेकिन कभी सोचा करती थी जिसके 18 भाई हो और अब्बास जैसा भाई किसकी मजाल है। लेकिन अब्बास अब वो दिन आ गया, वह चेहरा सुर्ख हो गया, मैदान में आए और आकर एक एक को देखा, का एक एक से बदला लूंगा। जब हुसैन के करीब गए, यही इताअत अब्बास है, जब हुसैन के करीब गए तो मौला हुसैन ने पुश पे हाथ रखा और इतना कहा कि अब्बास तलवार नहीं चलाना, अब्बास जंग नहीं करना, इताअत इमाम के सामने सर झुका दिया। बस मैदान में आए, जंग की रुदाद ये कि पानी लेके वापस आ रहे थे, एक के बाद दूसरा शाना खता हो गया। मैंने कितनी आसानी से बोल दिया, पहले सीधा शाना खता हुआ, फिर दूसरा शाना खता हुआ। अब अब्बास की ख्वाहिश थी कि पानी खेमे तक पहुंचे, मश्के सकीना को दांतों में दबाया, अपने आप को सिफर बनाया। लेकिन जालिमों के तीर बरसे, हुरमला जालिम का तीर ऐसा चला कि मश्के सकीना छिद गई, अब्बास की उम्मीदों में पानी फिर गया। अब अली का लाल अपने रुख को फौजों के दरमियान मोड़ लिया, मोड़ना था, हर तरफ से हमले हो रहे थे। अरे एक तलवार मार रहा, कोई नैजा मार रहा, आखिर में सर पे एक ऐसा गुर्ज आया कि अली का लाल घोड़े से जमीन पर आ गया। काका मेरा आखिरी सलाम कबूल कीजिए। परवरदिगार मेरे मज़लूम अल अब्बास का वास्ता हमारी ये मुख्तसर सी मजलिस को कबूल फरमाए। जिन जिन लोगों ने आज की मजलिस में ताउन किया है, अल्लाह उनकी सही को कबूल करके उनके रिस्क के दरवाज़ों को खोल दे, उनके मरहूमीन के दर्जात को बुलंद फरमा। अल्लाह मेरे मौला अब्बास के नाम पे हमारे गुनाह कबीरा सगीरा को माफ़ कर दे। हम सबको उम्र और ज़ियारात नसीब हो, जो परेशान हाल मोमिन उनकी परेशानी को दूर कर दे। बेहक के मजलूम वाला अब्बास, बीमार करबला, बीमार मदीना का वास्ता, सारे बीमारों को मुकम्मल तौर पर सेहत कामिला अता फरमा। अल्लाह तू किसी का मोहताज मत बना सिवाय तेरे और मोहम्मद और आले मोहम्मद के। तेरे दीन के तेरे बंदों की खिदमत करने की तौफीक अता फरमा। हमारी आज़ादारी को कबूल फरमा ले बीबी। परवरदिगार पूरे अय्याम अज़ाम दो महीने आठ दिन हम आज़ादारी हुसैन करें और वो आज़ादारी को मजलूम बीबी जहरा की बारगाह में खुबूइयत तक पहुँचाए। मेरे इमाम ज़मानों को सलामत रखना, दुनिया भर में शियत की हिफाजत फरमा, आज़ादारों की हिफाजत फरमा, तमाम ज़ाकिरीन उलमा की हिफाजत फरमा, मेरे इमाम के ज़ुहूर में ताजील फरमा, हम सबको इमाम के नासिरों में शुमार फरमा। और एक सूरह फातिहा जिन जिन लोगों ने आज की मजलिस को स्पॉन्सर किया, उनके लिए, अपने अपने मरहूमीन के लिए, तमाम उलमा, ज़ाकिरीन, मुश्तहिदीन, मातमदार, मराजे आलम, जिस मोमिन का मैंने वाक़या सुना।